हम लोग श्रीमद् भागवत से प्रहलाद महाराज के उपाख्यान से भक्ति के संबंध में कुछ विवेचन कर रहे हैं। कोई भी जप तप और जितने भी भक्ति के अंग हैं या जितने भी कर्म हैं, ज्ञान है, योग है, तपस्या है, होम स्वाध्याय ध्यान इत्यादि है, यदि भगवत से संबंध नहीं है, भगवान से संबंध नहीं है, तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। और लौकिकी वैदिकी वापि यात्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल्ये वशात् आज्ञा। और कोई भी क्रिया हो, शास्त्र में उसका उल्लेख हो और न हो, यदि भगवत उद्देश्य से कृत होती है तो उसी को भक्ति कहते हैं। इसमें हम लोग विशेष रूप से एक एक श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन दास्य साक्षात निवेदन इत्यादि के संबंध में दिख रहा है। जैन केन उपायेन कृष्णे मनु निवेशय, जिस किसी भी उपाय से हो अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान में आविष्ट कर देना ही भक्ति है। किंतु जिस किसी उपाय से कहने से भी अपने मनमानी तरीकों से यदि हम उच्छृंखलता पूर्वक करते हैं, शास्त्र और अपने पूर्व पूर्व महाजनों गण की उपेक्षा करके, तो नहीं होगा। इसलिए देखा जाना चाहिए कि हमारे महाजन लोग इसको ग्रहण किए हैं कि नहीं, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में वो पद्धति है या नहीं। यदि है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। विशेष करके संसार में जितने भी भगवान को पाने के लिए उपाय हैं, उसमें केवल एक भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा सभी कुछ हो जाए, वो सबसे श्रेष्ठ है, जिसको भी हम लोगों ने कहा। किंतु ये सब कुछ होना चाहिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के अनुगत्य में होना चाहिए, तब तो ये भक्ति होगा, अन्यथा भक्ति नहीं होगा। तो हम लोगों ने नाम के संबंध में, कीर्तन के संबंध में हम लोगों ने बतलाया। कल नमापराध भी हो गया है। अब हम लोग तीसरे में चलेंगे। इसी के अंदर में अपनी दीनता प्रकाश करते हुए, कल ये बतलाया था, अपनी दीनता प्रकाश करते हुए अपने अभीष्ट भावना को भगवान के चरणों में निवेदन करना, स्तव स्तुति ये सब पाठ करना, ये सब कीर्तन के अंतर्भुक्त ही समझना चाहिए। जितने भी चीज पहले स्कूलों में हम लोगों के समय में, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, ये सब चीजें आज हो गया कितना 40 वर्ष 50 वर्ष याद है, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए, ये सब चीजें चलती थी। अब स्कूल कॉलेजों में ये सब चीजें, विशेष करके कॉलेज में, तो इसके कोई अभी है ना, कोई ना कोई प्रार्थना होती है। तो ये सब होना चाहिए। विशेष करके कुछ दैन्य मूलक जरूर होनी चाहिए, दीनता मूलक होनी चाहिए। हमें याद है जब हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, तो वास क्या गामा पहलवान का नाम सुना था, दिग्विजय गामा, बहुत ही बलवान। रशिया में जब गए वो, तो वहां पर कोई एक हाई कोर्ट के जज थे और वहां रशिया में सबसे पहलवान थे, उनका नाम ही मुझे याद था अब नहीं। वास्कोडी गामा से डेढ़ गुना लंबा और डेढ़ गुना चौड़ा था वो, तो वहां पर उससे वो विश्व को विजय करता हुआ जब रशिया में पहुंचा, तो उनको जितना उनके लिए जरूरी था, किंतु वो जब गया देखने के लिए तो उनके अखाड़े में पहुंचा और वो चले गए थे ऑफिस, जानबूझ करके अखाड़े में गया और वहां पर उनका जूता रखा था। किसका?
पलवान का।
वो जूता रखा, जूता का पना तो चारों तरफ, इनका पैर चारों तरफ में घूम गया, चौड़ाई में ही इनकी इनका लंबाई पैर चला गया और उसकी चीज देख करके ये डर गया। किंतु एक गदा थी, वो डंबल इत्यादि कुछ कहते हैं ऐसे घुमाने का या उठाने का, जैसे इसको देखें तो वो तो यही बहुत भार है, ये तो इसी को ये उठाते हैं, तो यदि हमने उठा लिया तब तो इनसे लड़ेंगे, नहीं तो मैं चला जाऊंगा चुपचाप, ऐसी भावना करके जब उठाया तो उसको झट एकदम उठा लिया, तब उसको कोई शक्ति नहीं। बस जबकि हुई कुश्ती, जब मिनटों में उसने कुश्ती एक दो चार मिनट में ही उनको चित कर दिया। वही व्यक्ति जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वहां चला गया, अपने हाथों से ग्लास को उठा करके पानी नहीं पी सकता, उसके घर वाले दूसरे लोग पानी का ग्लास उठा करके उसको दे रहे थे और पैसा एकदम कुछ है नहीं, जैसे उनको दवा कुछ हो तो भारत के लोग ऐसे सुन करके यहाँ से कुछ कुछ पैसे देते। ऐसी दीन अवस्था जब ऐसे ऐसे लोगों के, मैंने इसलिए कह रहा हूँ हिरण्यकश्यप की तो बात, ये सतयुग के पहले की ये सब बातें इसलिए मैं नहीं कह रहा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति असहाय है, परिस्थितियों के सामने सभी बेबस हैं, इस चीज को समझना चाहिए। अभी जवानी है ना, नया रक्त है, इसलिए नहीं समझते, हम समझते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, किंतु विवश हैं, विशेष करके परमार्थिक वस्तुओं में हम लोग एकदम विवश हैं। अवांग मन सो गोचर वो भगवान है, उसके संबंध में तुम जानेगा कैसे? कृष्ण को समझने के लिए ये जड़ जगत की बुद्धि नहीं वहां पर चलेगी, परमार्थ में किसी चीज को समझने के लिए ये जागतिक बुद्धि और तर्क युक्ति और बड़े बड़े साइंटिस्टों का वो जो क्या रूम होता है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब वहाँ पर कुछ नहीं चलेगा, जो आत्मा कैसी है लेबोरेटरी इत्यादि में वो सब चीज पकड़ में नहीं आएगी। मैं एक बार कह रहा था, एक अमेरिका के बहुत बड़े भारी साइंटिस्ट, वो इंडिया के ही जन्म लिए, वो वहाँ पर गए थे, वहाँ से आए तो किसी ने कह दिया तो हमारे पास में आए, उन्होंने कहा जैसे स्वामी जी आप लोग इतना ही ये सब कुछ करते हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं यहाँ आता हूँ तो मैं बहुत लज्जित होता हूँ कि हमारा ये भारतवर्ष अपना जन्म स्थान और यहाँ पर गरीब बिल बिला रहे हैं, कोई देखने वाले नहीं, अधिकांश लोग बहुत दरिद्र हैं, पुष्टिकर भोजन नहीं मिलता, आप लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ नहीं करते। तो हमने कहा आप इसी को सर्वस्व मान रहे हैं, आपने कभी यह विचार किया है समस्त संसार में अमेरिकन और रशियन सबसे बड़े उन्नत हैं सभी इन विषयों में, कहां सुनते हैं कि चंद्रलोक में जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो आप लोग ये देखते हैं कि अमेरिका में पहले से चोरी बदमाशी और तरह तरह की ये सब चीजें बढ़ रही हैं, सुसाइड बढ़ रहा है, लोग बदमाशी करके कैसे हड़प ले सकते हैं, ये सब चीजें इन्वेंशन साइंटिफिक रूप में हो रही हैं, व्यभिचार बढ़ रहा है चारों तरफ में, झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, अच्छे आप लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते जो उनको चेंज कर दिया जाए, ऐसा कोई विज्ञान और ये सब क्यों नहीं करते? कहें हम लोग यहाँ पर भी बस हैं तो हम लोग यही काम करते हैं जो लोग आप लोग नहीं कर सकते, हम लोग ये करते हैं, हम लोग की दृष्टि वहाँ नहीं है जिससे कौन खा कर रहे हैं, ये तो सभी एक चिड़िया पशु पक्षी गधे घोड़े सुअर तक भी खा लेते हैं, इसके की कमी नहीं है, बिना खाए कहाँ लोग मरते हैं, किंतु ये सब जो चीज़ों जो जगत में बढ़ रही इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? अमेरिका या रशिया या और जितने बड़े बड़े उन्नतशील देश हैं, एक आदमी का हृदय परिवर्तन कर देना, ये आप लोग कुछ कर सकते हैं, किंतु हम लोगों के यहाँ यही हमारा प्रधान काम, किस भी उपाय से किसी भी उपाय से, जैन केन उपायन, यदि कृष्ण में उनका चित्त किसी प्रकार से भी लगा दिया जाए, इसका नाम है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बड़े बड़े देखते हैं हम लोगों के शास्त्रों में, अभी भी चोर डकैत बदमाश भी आते हैं हम लोगों के सामने, थोड़े दिन कुछ रह करके एकदम बदल जाते हैं, वो रह ही नहीं जाते। ये भगवान के नाम में शक्ति है। अब इसका वैज्ञानिक लैबोरेटरी में इसका परीक्षण किया जाए, ये कैसे होता है, ये हो सकता है संभव, ये संभव। इसलिए हम लोगों के शास्त्र के अनुसार हमारे महात्माओं के वचनों पर चलना पड़ेगा। इसलिए कोई भी चीज हो, हमारे ऋषियों महर्षियों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं और इसका अनुमोदन किया है तो ठीक है, अनेक नई नई चीजों में जाने की कोई जरूरत नहीं, उसे जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जिन सबसे ये देखना जरूरी है, जिस किसी भी वस्तु से, किसी भी विचार से, जिस किसी भी साधन से भगवान का यदि संबंध है, वो संबंध जितना ही उन्नत श्रेणी का होगा, वो व्यक्ति उसमें आने पर उतना ही उन्नत होगा, अन्यथा कदापि उसको नहीं। इसलिए जेने के न उपाय का कहने का मतलब क्या है, जैसे तैसे भगवान में लाओ, किंतु सभी चीजें एक बराबर हैं, उनमें कोई तारतम्य नहीं है, ऐसी बात नहीं, उसमें तारतम्य है। एक आदमी मान लिया कि जैसे कोई यज्ञ में भगवान को ओम स्वाहा कर रहा है, एक आदमी कुछ करके भगवान को अर्पण कर रहा है, एक आदमी कोई उपकार कर रहा है, एक आदमी ध्यान कर रहा है, एक आदमी भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, एक आदमी कुछ कर रहा है, ये सब उस डिग्री पर विचार है। जो साधन जितना ही भगवान के निकट होगा, उसका आश्रय करने से वो व्यक्ति उतना ही जल्दी से पहुंच जाएगा भगवान के तरफ, उसको सुख और शांति मिलेगी। इसीलिए कहा जैसे हम खाते हैं प्रति ग्रास के साथ साथ में, उतना ही पेट भरेगा और उतना ही खाने की स्पृहा कम हो जाएगी और शरीर में पुष्टि होगी, उसमें कोई दूसरा बैरोमीटर इत्यादि की जरूरत नहीं है, दूसरे कोई चीज की जरूरत नहीं, अपने आप वो खाएंगे तो पेट भरेगा और उतने ही खाने की स्पृहा भी दूर होती चली जाएगी। पूरा खा लेंगे पेट भर जाएगा, कोई दिन और लीजिएगा नहीं लेंगे, ऐसी वैसे भगवान का भजन करने से हमारी उन्नति होगी सब विषयों में, ये अपने आप उपलब्धि हम करेंगे, उससे क्या होगा, चित्त सब समय प्रसन्न रहेगा, किसी भी स्थिति में चित्त प्रसन्न रहेगा, भगवान की उपलब्धि होगी और विषयों में वैराग्य होगा। यदि लाख जन्म भी हम साधन भजन करके विषयों से वैराग्य नहीं होता तो इसका मतलब है जो साधन भजन एकदम गलत है, और थोड़े से ही साधनों से चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा और सब समय चित्त प्रसन्न रहता है, आत्मा प्रसन्न रहती है और भगवान की अनुभूति होती है, तो समझो कि हमारा साधन भजन ठीक है। ये सब बैरोमीटर हैं, ये सब लक्षण है, तो ये सब हम लोग पहले बतलाए हैं। आज हम लोग चलेंगे तीसरा है स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरण। कहते हैं कि केवल स्मरण ये संभव नहीं है, केवल स्मरण हाँ, श्रवण की स्मरण की प्रधानता रहेगी, पहले श्रवण कीर्तन ये दोनों को ठीक रखते हुए स्मरण करेंगे भगवान का, तब तो ये स्मरण है। भगवान का कोई संबंध नहीं, स्मरण क्या कर रहे हैं, मैं जगत का कोई चिन्ह, मैं ब्रह्म हूं, संसार से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, ऐसे बैठ करके हम शरीर नहीं हैं, किंतु हम क्या हैं, क्या हमको ध्यान करना चाहिए, स्मरण ये नहीं कुछ है। इसलिए बहुत से लोगों ने इसको कहा जैसे एक बिंदु कहीं लगा दो और उस पर देखो, ध्यान लगाओ, फिर दोनों ध्रुवों के बीच में यहां पर चित्त का लगाओ, सब जगह से हटा, खुली आंखें अध खुली होनी चाहिए, दोनों आंखों को ऐसे ले, हाथ और शरीर सब ऐसा रहे। ऐसा करते करते चित्त अपने आप समाहित होकर के शुद्ध हो जाएगा, अपने आप विषय को भूल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बड़े अच्छे सज्जन से मैंने सुना, अखंडानंद सरस्वती का नाम तुम लोग जानते हो, उनके पास में कोई गया, जो चित्त को कैसे हम निरोध कर सकते हैं विषयों से, सहज उपाय क्या? उन्होंने कहा, और विचार करने में ठीक ऐसा मालूम होता है, अपनी जीभ को सुनने में मुख के अंदर में ही लगा दो, ऊपर टच मत कहीं करो, और वहीं पर अपने मन को अड़ा दो। बस धीरे 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 तुम्हारा कुछ दिनों में चित्त स्थिर हो जाएगा। शून्य में रखो, कहीं लगने ना पाए, मैंने चित्त की वृत्तियां वहां पर चली जाए। ये सब क्या चीज है? कोई आधार नहीं
है,
निगेटिव एक्शन। इसलिए ऐसे स्मरण से नहीं होगा, भगवत संबंधी होना चाहिए, यथार्थ में कोई रियल वस्तु होनी चाहिए, अनरियल होने से नहीं होगा। कोई ना कोई चीज ठीक होनी चाहिए। इस जगत में हम जिस चीज का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वो भी प्राकृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें अदल बदल, जैसे कि कृष्ण का शरीर, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, ये नित्य है, सनातन है। रामचंद्र जी धनुष लिए हुए हैं, बाएं तरफ में सीता जी खड़ी हैं और लक्ष्मण जी हैं, पीछे में हनुमान जी हैं। इस प्रकार से ध्यान, ये इनमें कोई भी प्राकृत नहीं है, ये युग युगांतर में कभी नहीं बदलेगा। कृष्ण बंशी लिए हुए हैं, पास ही में श्रीमती राधिका जी हैं, राधिका जी के तरफ में देख रहे हैं, हाथ से उठा करके एक पान की बीड़ा दे रहे हैं कृष्ण के मुखार में, अत्यंत सुंदर। ये प्रकृति के द्वारा कभी भी इस चीज का ध्वंस नहीं होगा, ये बदलेगा भी। ये हमारे महाजनों के द्वारा ये आविर्भूत ये चीजें हैं। अभी मान ले कि हम इसमें से हमारा कोई भी प्रिय व्यक्ति हो, अपनी स्त्री हो, बेटा हो, नाती हो, या शरीर धारण करने वाला कोई भी हो, उसका हम यह ध्यान कर रहे हैं। दो दिन के बाद में मर जाएगा, शरीर बदल जाएगा, उसका फिर अब दूसरी जगह में किस रूप में जन्म होगा कोई ठीक नहीं, इसलिए ये ध्यान सब, इसलिए मॉन्टेन कोई वस्तु का ध्यान नहीं होना चाहिए, नित्य वस्तु का ध्यान होना चाहिए। इस तरह से मान लिया कि बिंदु हम कहीं लगा करके उसको ध्यान करते हैं, बिंदु तो यही वॉशिंग कर दिया जाएगा, सफेदी हो जाएगी, बस वो बिंदु बंद हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं। इसलिए उसके संबंध में ये बताया, नित्य वस्तु का ध्यान होना चाहिए, जो कभी भी भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदले, चाहे हमारा लाख जन्म बदल जाए किंतु वो नहीं बदले, ऐसे वस्तु का ध्यान। और वो भी चिन्मय हो, सच्चिदानंद हो, सर्वशक्तिमान हो, तब हो। इसलिए सर्वशक्तिमान अचिंत खटन पटियसी शक्ति युक्त रसो वैसह अखिल रण शामित सिंधु भगवान का, ये सब। और यदि दूसरे का करेंगे कुछ लाभ तो होगा यही, चित्त वृत्तियां कुछ सुधार हो सकता, विषयों से चित्त ले आएंगे किंतु फिर उसको छोड़ देंगे, फिर विषय में रम जाएगी, किंतु भगवान वाला जो ध्यान है ये कभी इधर उधर नहीं हो सकता है। इस जन्म में क्या, कोटि कोटि जन्मों में। इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत, जो परम विरक्त हैं, विषयों से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे परम विरक्त, अब तो भय की अभिलाषी, अर्थात निर्भय की अभिलाषियां, मैं कहीं भी मुझे भय न रहे। अभी हम लोगों को भय है, यदि गृहस्थ हैं, नौकरी चाकरी में हैं, तो नौकरी चाकरी जाने का भी डर है। अभी लोग, आप लोग आए हैं 3 दिन 4 दिन की छुट्टियां लेकर के, यदि यहाँ पर कोई ऐसा विशेष काम लग जाए, भगवान का भजन इत्यादि, जिसमें आप लोगों को 15 दिन रहना पड़े और वहाँ पर कोई खबर न दें, तो यहाँ पर डरेंगे बैठ बैठ करके कि हमारी नौकरी कहीं नहीं चली जाए, कोई गड़बड़ी नहीं चली जाए। इस तरह से सब समय हम लोग अकुत भय नहीं हैं, किंतु संसार से जिनके कामना लेना देना कुछ नहीं है, सुखदेव गोस्वामी को कहीं पर लाख दिन बैठा लो, 1 घंटा बैठा लो, उनका क्या बिगड़ेगा? इस तरह से अकुतो भाई को जो चाहना चाहने वाले लोग ऐसे हैं जो योगी व्यक्तियों के लिए भी हरिनाम अनुस्मरण करते रहना चाहिए। कोई भी हो अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार भी तीव्रेन भक्ति योगेन जजतः
परम।
किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज जी को कह। कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज जी मरने वाले हैं, उनको ऐसी चीज बतलानी चाहिए 7 दिन में उनका कल्याण हो जाए। इसलिए परीक्षित महाराज जी ने कहा कि इस समय तुम ध्यान योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय किसी में मत जाओ। क्या करो ये सुनो। 7 दिन बस भागवत सुनाया, उसमें वो निविष्ट हो गए और निविष्ट होने पर उनकी चित्त वृत्तियां अपने आप स्वाभाविक भांति से जैसे गंगा की धारा समुद्र की तरफ में निरंतर रूप में प्रवाहित होती है, अविच्छिन्न धारा तैल धारा, ऐसी चित्त की वृत्तियां भगवान में, इसी का नाम योग, इसी का स्मरण, इसी का ऐसा होना चाहिए। इसलिए यहां कहते हैं श्रवण और कीर्तन को भगवत संबंधी जो बातें हैं उनको छोड़े बिना ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह पहली स्थिति ने? अब श्रवण भी स्मरण करना भी प्रारंभ से लेकर के अंतिम अवस्थाओं में उसके बहुत से तात्पर्य हैं, श्रेणियां हैं, सब एक नहीं है। जब कोई किसी के विषय में कुछ चिंतन करता है, अपनी स्मृति को उसमें लगाता है तो उसको कहते हैं स्मरण। जब किंचित अनुसंध्या अनुसंधान करता है, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी व्यक्ति की हम चिंता करें कि भाई उसका क्या हुआ, सुना है कि बम्बई में तो खूब जोर से कुछ लड़ाई परस्पर हो गई और वहाँ रहते हैं और जहाँ लड़ाई हुई उसी जगह में कहीं उनका घर है। अब यहाँ से बैठे हुए चिंता करते हैं उसका क्या हो, यह स्मरण हो गया ना। ऐसे ही भगवान के संबंध में हम जब शास्त्र में जो कुछ सुना है और उसके संबंध में अपने चित्त वृत्ति को अपनी स्मृति को उसके स्पर्श कराते हैं तो उसको कहते हैं स्मरण। जब किंचित, फिर दूसरी चिंताएं आ जाएंगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। तो जब कभी थोड़ा सा भी हम उसमें अपने चित्त को लगाते हैं, जैसे हमने सुना आज प्रसंग आया यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं और छोटे से कृष्ण नंग धड़ंग अपने बिस्तरे से उठकर पलंग से उठकर रोते हुए मैया की तरफ में आए, मैया सुनी नहीं गई और वो उतने जोर जोर से रो रहे हैं, आंख में आंसू नहीं तब भी ऐसे ऐसे ऊं कर रहे। फिर जब एकदम निकट आए तभी मैया ने नहीं देखा, वो दधि मंथन करने में एकदम व्यस्त है, आवाज निकल रही है ना दधि मंथन से, और इधर हाथों में कंगन इत्यादि बज रहे हैं और एकदम प्रेम में तन गोविंद दामोदर मांगे, शुद्ध बुद्ध उसी में लगा दिया है। कृष्ण ने देखा जी मैया तो भी नहीं देख रही, निकट में आ गए जब भी तो भी नहीं मैया ने सुना, तो एक हाथ से उनके केश को यहाँ पर अंचल पकड़ लिया यहाँ से और दूसरे हाथ से दधि मंथन
दंड
उनका पकड़ हाजिर कौन है ऐसा देखा, देखने की लाला कर रहा आंखों से गंगा और यमुना जी बहती हुई यहाँ से दोनों मिलकर के प्रयाग की धारा जैसे मिल गई और चल रही है बड़ी वेग से बंगाल ओशन ऑफ बंगाल में चली जा रही। देख करके मन ही मन में मुस्कुरा उठी, बस झट दधि मंथन छोड़ करके और उनको गोदी में बैठा दिया और बच्चे को थपथपा करके सिर सुनती हुई और अपने स्तन में लगा दिया, दूध अपने आप झरने लग गया। कृष्ण कितना पिएंगे, जितना पी रहे हैं उससे अधिक वो जा रहा है मुख से। एक तरफ विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में है, कितना बड़ा उदर, और दूसरी तरफ में यशोदा जी का वात्सल्य रस इतना जो विश्व ब्रह्मांड को भी तृप्त कर देगा, इसलिए पीने लगे खूब। और इतने में ही देखा जो दूध उत्पन्न करके पड़ रहा, जल्दी से कृष्ण को छोड़ करके और भगी उस दूध को रक्षा करने के लिए उफन करके गिर रहा है। जिस कृष्ण कृष्ण को सूतना अपने 60,000 हाथियों के बल से कृष्ण को अपने स्तन से नहीं हटा सके। और जैसा बस ऐसे कह करके और बाएं हाथ से उनको पकड़ करके बैठा दिया और कृष्ण बेबस होकर के महाराज काली दमन का जिन्होंने दमन किया अगासुर बकासुर जितने भी राक्षस असुर यहाँ तक कि हिरण्यकश्यपु और रावण प्रभृति को क्षण भर में समाप्त कर दिया। आज उनका न जाने बल कहाँ चला गया और विवश होकर के दांत कर्मण करते हुए रोने लग गए। मारा भी नहीं यशोदा मैया, बस एक हाथ से उठा करके रख दिया वहीं पर खड़े। इस तरह से इस लीला का कोई चिंतन कर रहा है, हठात आ गया क्योंकि सुना है ना, बड़ा अच्छा लगा ये सुनने में, पूरा यदि सुनते तो। वो बैठा हुआ है हरिनाम करने के लिए बैठा है, किंतु आज वही लीलाएं सब थोड़ी देर के बाद में, अरे तुम खाएगा नहीं किसी ने कह दिया, खाने का समय जल्दी आओ, क्या कर रहा है बैठा था, अब वो खाने बैठ गया, अब वो लीला को खुल गया। इस तरह से बीच बीच में जब जबकिंचित थोड़ा सा भी स्मरण होता है, इसको कहते हैं स्मरण। किंतु फिर भी बार बार और दूसरी बातें सब याद आती हैं। अभी आप लोग चित्त को स्थिर करके जितना ही शांत भाव से बैठ करके भगवत चिंतन में लगाएंगे, अपने चित्त को यहाँ पर स्थिर करने के लिए करेंगे, वो सब चिंताएं लाखों कोटि आज नहीं जन्म के पहले की और जन्म से जो भूलने की चेष्टा, वो सब बचपन की लंगोटियाँ, यारों की बातें, मैया ने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो सब बातें याद आने लगती है उस समय में जिसमें बैठते हैं। और समय याद नहीं आएगी, उस समय मन खाली है ना, इसलिए उसको अभी सीख कर रहे हैं, इसलिए उस समय, इसलिए उस समय का जो चिंतन है इसको कहते हैं स्मरण। पहला स्टेज है ध्यान का, ये पहला स्मरण है। वो ध्यान जितना ही श्रवण अधिक होगा चित्त निर्मल होता जाएगा और भगवान की कथाएं लीलाएं अपने आप हृदय में होती है। जितना ये बढ़ता जाएगा ध्यान उसका परिशुद्ध होता चला जाएगा। जब समस्त विषयों से मन की चित्त की वृत्तियों को वहां से उठाकर साधारण रूप में एक विषय में मनोनिवेश करते हैं तो उसका नाम है धारणा। बिना इस सब चीज के लिए लगाए और प्रैक्टिस किए अभ्यास किए हुए ध्यान नहीं होगा। और भी किस विषय में होगा, हमने जैसे पातंजल एक योग है, पातंजल योग में ये स्मरण की बहुत विधियां हैं। पातंजल योग में ईश्वर को नहीं माना गया बल्कि कर्मफल दाता कुछ मान लिया किंतु ईश्वर नहीं माना, बल्कि कर्मफल जितना है ध्यान का फल देने वाले एक अपूर्व को मान लिया और वही सब कुछ देते हैं, भगवान नहीं। ये जितने पांच दर्शन हैं वेदांत दर्शन को छोड़ करके व्यास, बाकी सांख पातंजल न्याय वैशेषिक इत्यादियों में भगवान नहीं माना गया। यहाँ तक कि सांख में बतलाए हैं परिधानात वा अर्थात ईश्वरा असिद्धे, ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, सब अपने मन के चित्त की शुद्धि के लिए एक मान लो कि भगवान है उनका रूप है। अद्वैतवादी लोग ऐसा ही करते हैं, उनका नाम रूप गुण कुछ नहीं है किंतु साधका नाम हितार्था या ब्रह्मणों
रूप कल्पना,
वो रूप की कल्पना मान लेते हैं, ऐसा कल्पना करके चलो। किंतु वैष्णव में अत्यंत कनिष्ठ अधिकारी भी भगवान के रूप को नित्य मानता है, यही उनमें और इनमें अंतर है, और उसी का वो ध्यान करता है स्मरण करता है, हमारी प्रार्थना को वो सुनते हैं, प्रार्थना करता है वंदना करता है। यहाँ पर भगवान का आविर्भाव हुआ उनकी भूमि को प्रदक्षिणा करते हैं, उसकी धूली लेकर के लगाते हैं और भगवान ये सब देखते हैं और उस पर विभाग करते हैं। और जो भगवान का रूप ही नहीं मानता, निराकार इत्यादि मानते हैं, न तो उनका ध्यान ही संभव है, न तो उनकी वंदना ही है संभव, न उनका कोई भी फल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं कि समस्त विषयों से अर्थात जितने भी मॉर्टल विषय हैं, मरणशील वस्तु हैं, परिवर्तनशील वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को से चित्त को हटाओ। मरणशील किसको कहते हैं, चिन्मय किसको कहते हैं, ये सब जानना है। नहीं जाने से चित्त को उसमें कैसे लगाएंगे, जिसमें जिन बच्चों का जन्म है वो कुछ दिन तक रहते हैं।
जायते
अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 दिन में दशाएं हैं, उन सब मरणशील हैं। प्राप्त जन्मते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर स्थिर होते हैं, फिर धीरे धीरे घटने लगते हैं, एकदम चिथड़े हो जाते हैं, अंत में ऐसे वस्तुओं से संसार माने क्या होता है, सम्यक रूपेण सरयति सरति, इसको कहते हैं संसार। अर्थात ये 6 दिन की दशाएं क्रमशः, आज कपड़ा नया है फिर पुराना होगा, 2-4 बार धुला दिए इसके बाद में फिर वो धीरे धीरे पुराना हो जाएगा, इसके बाद में फट जाएगा, इसके बाद में चिथड़ा हो जाएगा, अंत में उसका अस्तित्व ही नहीं, समाप्त हो जाएगा, मिट्टी के बदल में बदल जाएगा। तो इस तरह से इन ऐसी वस्तुओं से हमारा शरीर भी है, दूसरों का, इन लोगों से धीरे धीरे चित्त को हटा करके भगवान के तरफ में लगाने का नाम है धारणा। बार बार जाएगा, बार बार जाएगा, गीता में भी ऐसे ही कहते हैं। और विशेष रूप से भगवान के रूप नाम गुण लीला उनके परिकर, इन सब का विशेष रूप से चिंतन का नाम समाहित करके चित्त को, ये कभी ऐसा हो सकता है कभी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, फिर धीरे 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 ये बढ़ता चला जाएगा। अमृत धारा की तरह निर्वच्छिन्न भाव से प्रवाहित होने का नाम, स्मरण का नाम ही ध्रुवानुस्मृति है। ध्रुवानुस्मृति माने क्या, कहीं बीच में कटे नहीं, पद धारावत अविच्छिन्न, यहाँ पर लिखा अमृत धारा। अमृत धारावत कहने का तात्पर्य यह है भगवान अमृत के समान है, इसलिए अमृत धारा की भांति कहीं तार ना टूटे, उसी प्रकार से चित्त की वृत्तियां भगवान के नाम रूप गुण में ऐसे समाहित लग जाएं जो हटाने पर भी नहीं हटे। ध्रुव जी भगवान का चिंतन कर रहे थे, करते 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 पानी छोड़ दिया, अन्न जल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, हवा छोड़ दी, धीरे 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 सब कुछ छोड़ करके एकदम लग गए। 6 महीने में भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनके चित्त के मन में दिया। जब मन में दिया उस समय आविष्ट हो रहे हैं, जहां मन से निकल करके बाहर में खड़े हो गए, बस छटपटा करके आंख खोल दिया, कहां गया वो। इस तरह से ध्रुवानुमृति सब समय लगा रहता है, ध्रुवानुस्मृति इसको कहते हैं। स्मृति माने ध्रुव, ध्रुव माने
स्थिर,
ध्रुव माने एकदम स्थिर, जैसे ध्रुव तारा उत्तर में एक ही जगह पर सब समय, चाहे दिन रात, उसके अतिरिक्त जितने भी तारे हैं कुछ न कुछ स्थान बदल देंगे किंतु ये नहीं बदलेगा। उसी तरह से स्थिर होकर के जब स्मरण करने लगता है तो उसको ध्यान कहते हैं, ध्रुवानुस्मृति। और केवल मात्र ध्येय वस्तु की स्फूर्ति होती है और किसी वस्तु की नहीं होती है, तो इसको कहते हैं समाधि। समाधि माने क्या, सम धी, धी माने बुद्धि मन चित्त, ऐसा हो गया है जो नित्य जो भगवान है उनके समान हो करके और उनमें संलग्न हो गया, इसलिए उनको समाधि कहते हैं। किसी स्थल पर भगवान की लीलाओं का चिंतन करने वाले, जैसे हम लोगों के गोस्वामी लोग, ये ध्रुव इत्यादि का मंत्रमयी उपासना का ध्यान करते हैं एक स्थिर वस्तु का, लीला जो एज ए चेन माला के समान जो चल रही है, ऐसा नहीं। हमारे गोस्वामी लोगों का है ध्यान, अभी ध्यान कर रहे हैं कृष्ण की एक सवेरे की लीला से आरंभ करके अंत तक सवेरे तक की लीला है, ये लीला स्मरण चिंतन है, समाधि से भी ऊपर ये सारस्वती है। अच्छा, तो ये दास्य सख्य पार्सल्य और मधु, ये सब लीलाओं का स्मरण इस प्रकार से हो सकता है समाधि में। इसमें जो शांत भक्त हैं, जैसे कि सनक सनातन सनातन सनक कुमार इत्यादि, इनकी पहले वाली समाधि होती है और वस्तुओं से हटा करके किसी एक वस्तु में लगा दिया, शून्य पर भी लगा दिया। किंतु भक्तों का होता है भगवान के राम रूप गुण लीला के प्रति समाधि। इस तरह से यहां तक तो हुआ साधारण रूप में, किंतु दास सख्य बात्सल्य और मधुर का क्रमशः वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, बहुत उन्नत, जैसे रूप गोस्वामी और लोगों का देखा जाता है। एक समय में हम वो हमारे नरोत्तम ठाकुर जी के एक सखा थे
रामचंद्र,
उनका नाम था। किसी समय वो चिंतन करते 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 श्रीनिवास जी एकदम समाधिस्थ हो गए और 3 दिन तक उनकी समाधि नहीं टूटी। सब लोग समझे कि ये तो मर गए, तो उनके शिष्य रामचंद्र जी को बुलाया, भाई ये क्या हो गया, ये तो उठी नगर 3 दिन हो गया, शरीर में एक प्राणी नहीं है। तो आकर के देख करके देखा जी इनका चेहरा तो बहुत प्रसन्न है, प्राण तो है नहीं, अच्छा ठीक है, इनको कोई डिस्टर्ब मत करना, खुद सुरक्षित रखना, और मैं भी ऐसे ही समाधिस्थ होता हूँ, मैं इनको ले करके तब आऊंगा। ऐसा करता कि वही पास में उन्होंने आसन लगा दिए और समाधिस्थ हो गए। 3-4 दिनों के बाद में वो लौटे तो उन्होंने बतलाया मैं वृंदावन चला गया शरीर को छोड़ करके, और वहां पर खोज करने लगा कि कृष्ण की लीला कहाँ हो रही है, कहाँ पर चले गए प्रकट लीला में, और वहां पर खोज करते करते मालूम हुआ अभी दोपहर की लीला हो रही है और राधा कुंड या यमुना के में सब लोग मिले हैं, और उस समय में श्रीमती राधिका जी के नाक का बेसर कहीं गिर गया और उसी को सब लोग खोजने में मिल नहीं रहा है। तो यहाँ तो हो गया एक क्षण, किंतु वहां के लिए हो गया 3-4 दिन। इसलिए सुभाष जी उसी लीला का चिंतन करते हुए उसी में खोज रहे हैं, इसलिए लौटे नहीं, ये पहुंच करके और वहां पर खोजने लगे। बाई चांस इसको कमल के नाल में कहीं अटका हुआ मिल गया, उन्होंने लेकर के अपने उनको दे दिया, इनको इन्होंने दे दिया, रुक्मंजरी को इन्होंने दे दिया, ललिता जी को इन्होंने दिया, बड़े प्रसन्न होकर के इनको उसके लिए पुरस्कार दिया। इसके बाद में यहाँ पर आकर के बतला सब लोग आश्चर्यचकित हो, ये होती है समाधि। इस समाधि से कभी च्यूत होने की कोई संभावना नहीं, ऐसा हो जाए कोई दोनों के बाद में समाधि नहीं, शरीर को छोड़ करके उस लोक में चले जाएंगे जहां पर नित्य उनकी लीलाएं होती हैं, ये समाधि का फल है। जन्म मरण से ऊपर उठना ही समाधि का फल नहीं है, फिर जन्म आया फिर हम लोग करते रहे तो ये नहीं, उस समाधि का फल या भगवान नाम कीर्तन का फल, भगवान नाम के कीर्तन का स्मरण का फल है भगवान के चरणों में प्रेम होकर के इस शरीर को सदा के लिए छोड़ करके बैक टू गॉड एंड बैक टू होम, ऐसा वहां पर पहुंचना है। इसके लिए मूल उद्देश्य यदि हम नहीं ठीक रखेंगे, जाने का स्थिर ही नहीं कोई बिंदु आ जाए, किस लिए ध्यान करते हैं, किस लिए करते हैं, इसलिए कि जब तक हम करते हैं तब सांसारिक चिंताएं नहीं रहती, इतना तो एक लाभ है, इसके बाद में छोड़ देता हूं कि संसारिक चिंताएं आती हैं, इसलिए नहीं, ये सब बहुत गौण फल है। अंत में होना चाहिए नित्य ऐसी समाधि हो करके संसार से आवागमन से हो करके हम अपने जहां अपना नित्य स्थान है, हम यहाँ के नहीं हैं, वहां पर सब कुछ चिन्मय है, वो चिन्मय राज्य है, उसका वर्णन करने से भी इस जगत में समान है। ब्रह्म संहिता में, श्रीमद भागवत में, गोपाल चंप इत्यादि में सबका वर्णन मिलता है, किंतु हम लोगों के समझ जितना ही हमारी आत्मा उन्नत होती जाएगी, हमारा चिन्मयत्व उपलब्धि होगा, उतने ही परिमाण में हम इस चीजों को समझेंगे। इसलिए शास्त्रीय विधान के अनुसार में ये सब चीजें होनी चाहिए, किंतु समन और कीर्तन को छोड़ करके नहीं। अब चला पाद सेवन, पाद समन किसको कहते हैं, श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, यहां पर विष्णु पाद सेवनम, श्रवण कीर्तन और स्मरण को त्याग किए बिना ही जो भगवान के चरणों की सेवा, उनके धामों में जाना, जैसे आप लोग सब यहाँ आए हैं, ये पाद सेवन है। वृंदावन में हम लोग जाते हैं, ये सभी पाद सेवन है। पाद सेवन बहुत प्रकार का होता है, जिसमें ये भी एक प्रकार का है। स्मरण की सिद्धि के लिए कोई कोई पाद सेवन करते हैं, कीर्तन की सिद्धि के लिए हम लोग गोवर्धन जाते हैं, किस लिए ना? आवाज़ समझ में? गोवर्धन किस लिए जाते हैं? वो पद सेवा है गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा। किस लिए? हम लोगों का जो श्रवण जो हम लोगों ने किया है, या जो कीर्तन करते हैं ललिता सखीर अनुवाद, अथवा और जो भजन करते हैं, उसकी सिद्धि के लिए गिरिराज की कृपा होगी, उनकी परिक्रमा करेंगे और हमारी वो सिद्धि होगी। इसलिए करते हैं, जो ध्यान करते हैं वो ध्यान का विषय, वो सिद्धि, इसलिए पद सेवन उसके उस रूप में किया जाता है। आदमी है यहाँ पर हरिनाम कर रहा है, कथा सुन रहा है, चलो आज गिरिराज, मन नहीं लग रहा, क्या करेंगे, मन चंचल, चलो गिरिराज जी की परिक्रमा। किस लिए? हमारा मन लगे वृंदावन, मन नहीं लगता वृंदावन में जाए दर्शन करें, किंतु 10 दिन दर्शन करते रहिए, परिक्रमा करते रहिए, जिंदगी सारी जीवन भर मन नहीं लगेगा। तो जिनका मन लगता है वो करेंगे। गोवर्धन की परिक्रमा की एक छोटी सी कहानी है। कोई एक जन्म से ही जिसकी रीढ़ नहीं थी, बैठ नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है, कोई लड़की थी जन्म से ही, जब कुछ बड़ी हुई तो गोवर्धन की महिमा कहीं से सुनी। आज से करीब करीब 100 वर्ष पहले की बात है, अभी उसको मरे हुए अभी 2 वर्ष हुआ। तो वो एकदम लूली, खड़ी नहीं हो सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। उन्होंने घर वालों को कहा, जैसे हम तुम्हारे ऊपर में भारवाने, जब बड़ी हो गई हमको गोवर्धन में तुम लोग छोड़ा, हम अपना जीवन हम वहाँ पर पालन कर, कितने लोग आते उनको गोवर्धन में छोड़ दिया। उसने कहा कि गिरिराज गोवर्धन जी, यदि मैं थोड़ा समय आपकी जैसे तैसे सरक करके भी परिक्रमा करने की चेष्टा करूँ, आप हमको बल दीजिए, ये ऐसा कह करके और सब कुछ उसने खड़ा होने का प्रयास किया और देखा क्या, थोड़े थोड़े धीरे 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 खड़ी होने लग गई, खड़ी हो गई तक अच्छी, मैं खड़ी हो गई, आज तक 10 वर्ष तक मैं खड़ी नहीं हूँ गिरिराज, मैं 1 महीने में भी, 2 महीने, 1 वर्ष, 10 वर्ष में भी, किंतु आपकी परिक्रमा इसी, जब इतना खड़ी होकर के की 5 हाथ भी चली जाऊंगी तो मैं परिक्रमा इसी कर सकूँ। तो चलने लगी, तो पहले ही दिन काफी चल ली, फिर दूसरे दिन चली, उस दिन में परिक्रमा हुई, कहा अब जीवन भर में परिक्रमा, लोग खाने के लिए देने लग गए, जब तक थी अंत तक परिक्रमा थी, तो उसका कुछ फल होगा। और जो सब सुन करके समझ करके गिरिराज जी से वैसी प्रार्थना करने के लिए कि राधा कृष्ण के चरणों में हमारा अहित प्रेम हो, उनका अधिक होगा, इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। सभी कुछ देने वाले वो हैं, इसलिए स्मरण की सिद्धि के लिए कुछ लोग पद सेवा करते हैं, किंतु सेवा विग्रह के अन्य अंगों का को छोड़ करके केवल मात्र पद शब्द ही सेवक के लिए, सेवावृत्ति के लिए ही उल्लिखित हुआ है। तात्पर्य ये कि सेवा विग्रह ठाकुर जी है, तो उनके सब अंगों का उल्लेख नहीं करके केवल पद का ही उल्लेख क्यों किया गया? पद सेवन क्यों नहीं, हस्त सेवन, अंग सेवन और सब क्यों नहीं कहा गया? पद सेवन किस लिए कहा गया? सेवा प्रवृत्ति के लिए, और दूसरा सेवा प्रवृत्ति के लिए। कहीं भी हम लोग देखते हैं शास्त्रों में ऐसा ही लिखा जाता है, लिखा जाता है बंदे बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षु, पाद रेणु, यहां यहां पर भी शास्त्र में देखें भगवान के चरण कमलों की, मुख कमल की मैं सेवा कर, ये सब नहीं हो, ये अपनी दीनता प्रकाश करते हुए भगवान की सेवा को प्राप्ति के लिए सबसे जो तुच्छ चीज सबसे छोटा है उसी से ही आरंभ करता है, इसलिए चरण सेवा के लिए पाद सेवा कहा गया। देखिए पांच सेवा के अंतर्गत में क्या क्या चीज है। पांच सेवा का केवल परिक्रमा ही नहीं, श्री मूर्ति का दर्शन, ये आरती आरंभ हुई, हम लोग जहां तहां से दौड़ करके यहाँ आते हैं दर्शन करने। ये कैसे आते हैं, किसके द्वारा आते हैं,
पैर के द्वारा।
और कहां निगाह कहां जाती है, सबसे पहले ठाकुर जी का यहाँ चरणों में जाएगी, चरणों में ही जाना उचित है दर्शन। इसलिए शिव विग्रह का दर्शन, स्पर्शन, अधिकारी व्यक्ति जो दीक्षित हैं भगवान के चरणों का स्पर्श करेंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, अनुगमन करेंगे। अनुगमन माने ठाकुर जी की कहीं यात्रा शोभा, जन्माष्टमी इत्यादि हो रही है, ठाकुर जी जा रहे हैं, देखते ही दौड़ करके जब जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। केवल उन्हीं के संबंध में नहीं, यदि गुरुदेव आ रहे हो ना तो यहाँ से देखा जब गुरु जी आ रहे हैं तो उनको प्रणाम यहीं से कर करके जा करके, और फिर आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे आओ या आगे आओ, आगे चलिए पधारिए, इसलिए आगे भी जा सकते हैं, कभी पीछे भी चल सकते हैं, आगे आगे जानते हैं तो उनके पीछे पीछे चलना चाहिए, कभी साइड में भी चल सकते हैं, चार पांच आदमी दस आदमी हैं आगे पीछे का की जगह नहीं तो क्या करेंगे, ऐसा इसको कहते हैं अनुगमन श्रद्धा पूर्वक। जब ठाकुर जी जब चले जाएं, जा रहे हो तो उनका अनुगमन पीछे से चलना चाहिए। गुरु वैष्णव हैं, हमसे उच्च पूज्य लोग हैं, माता पिता भी हैं, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ये घर से ही चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, माता पिता से ही, गुरुजन से ही सीखना चाहिए, तो फिर भगवान की। जब गुरु जी आए, वैष्णव लोग आए पूज्य, जब जा रहे हो तो उनका पीछे पीछे थोड़ा सा जा करके।